आपने पूर्व पाठ में पढ़ा कि अग्नि की तरह शब्द में भी ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व शक्तियां होती हैं। अब इसके आगे 56वीं कारिका से पढ़ेंगे। विषयत्वम अनापन्नैः शब्दैः नार्थः प्रतीयते न सत्तयैव तीर्थानाम् अग्रहीताः प्रकाशकाः। कारिका के शब्दों पर गौर करने से पहले आप यहाँ की बात समझ लीजिए। आसान ही है कि शब्द जब जो शब्द ज्ञात होता है, माने जिस शब्द का ज्ञान होता है, वही शब्द अर्थ की प्रतीति कराता है, और जिस शब्द का ज्ञान नहीं होगा वो शब्द जो है अर्थ की प्रतीति नहीं कराता है। ये सामान्य सी बात है। जैसे मान लें आपने मेरी आवाज़ को सुना, मेरे शब्द को सुना, तो आपको अर्थ की प्रतीति होती है, और जिस दिन मैं पाठ नहीं भेजता हूँ आप शब्द मेरा नहीं सुनते हैं, उस दिन तो अर्थ की प्रतीति नहीं होती है ना। तो यही चीज़ 56वीं कारिका में बताई गई है कि विषयत्वम अनापन्नैः शब्दैः, शब्दैः विषयत्वम अनापन्नैः, विषयत्वम का अर्थ करना है यहाँ पर बोध विषयत्वम। त्व और तल प्रत्यय एक ही अर्थ को बताता है, तो बोध विषयत्वम कहिए या बोध विषयता कहिए, एक ही चीज है। तो विषयत्वम माने बोध विषयत्वम अथवा बोध विषयताम अनापन्नैः, अनापन्नैः का अर्थ हुआ अनाश्रितैः। बोध विषयता पर जो अनाश्रित शब्द होता है उस शब्द के लिए कहा गया विषयत्वम अनापन्नैः शब्दैः, ऐसा शब्द जो कि बोध विषय नहीं है, जिसका बोध नहीं हुआ है, जिसका ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे शब्दों के द्वारा न अर्थः प्रतीयते, अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। न सत्तयैव ते अर्थानाम् अग्रहीताः प्रकाशकाः। ते अग्रहीताः शब्दाः, वे जो अग्रहीत शब्द हैं, मैं जब भूषण पढ़ा रहा था तो बताया था कि ग्रह धातु का शास्त्र में ज्ञान अर्थ होता है, लोक में ग्रह धातु का अर्थ ग्रहण होता है, पकड़ना होता है, लेकिन शास्त्र में ग्रह धातु का अर्थ ज्ञान होता है। तो गृहीताः माने ज्ञाताः, और अगृहीताः मतलब अज्ञाताः। तो ते अगृहीताः शब्दाः, वे जो अगृहीत शब्द होते हैं, जो अज्ञात शब्द होते हैं, उन शब्दों की सत्ता तो होती है, क्योंकि शब्द जो है व्याकरण सिद्धांत में नित्य है, और नित्य जो है उसकी तो हमेशा सत्ता रहेगी ही रहेगी। तो केवल सत्तया एव, केवल सत्ता होने के कारण अग्रहित शब्द जो है, अज्ञात शब्द जो है, वह शब्द न अर्थानाम प्रकाशकाः, वह अर्थों का प्रकाशक नहीं होता, वह अर्थों का बोधक नहीं होता। अब यहाँ तात्पर्य ये निकला कि शब्द की सत्ता तो रहती है, लेकिन केवल सत्ता मात्र से शब्द अर्थ का बोध नहीं कराता। जब वह बोध विषय बन जाता है शब्द, अर्थात ज्ञात शब्द जब होता है, तभी वह शब्द अर्थ का प्रकाशक होता है, अर्थ का बोधक होता है। ये बात यहाँ बताई गई। अब एक शंका यहाँ पर उपस्थित होती है कि इंद्रिय और शब्द, पूर्व पक्षी जो है वह इंद्रिय की तरह शब्द को और शब्द की तरह इंद्रिय को मानने के लिए एक तर्क देता है। क्या तर्क देता है? कहता है कि इंद्रिय जैसे अनुभव का करण होता है, करण समझते हैं ना, साधक तमम करणम, तो इंद्रिय से जैसे अनुभव होता है, अब मान लीजिए चक्षुर इंद्रिय है, तो उससे जब हम देखते हैं तो हमें अनुभव होता है, ज्ञान होता है। श्रोत्रेंद्रिय है, उससे जब सुनते हैं तो ज्ञान होता है। तो ये जो ज्ञान है ना, वही यहाँ पर अनुभव अर्थ का समझिए, अनुभव शब्द का। तो इंद्रिय जैसे अनुभव का करण है, अर्थात इंद्रिय से जैसे अनुभव मिलता है, ज्ञान होता है, उसी तरह से शब्द को सुनकर के भी जो है ना अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे इंद्रिय से वस्तु का ज्ञान होता है, उसी तरह से शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। तो दोनों में सिमिलरिटी है ना, दोनों में समानता है। तो जब आपने सिद्धांत बनाया कि शब्द जो है स्वयं का भी बोध कराता है और अर्थ का भी बोध कराता है, ये पहले बात आई थी ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम च में, कि शब्द स्वयं का भी बोध कराता है और शब्द अपने अर्थ का भी बोध कराता है। तो इसी तरह से इंद्रिय भी में भी होना चाहिए। इंद्रिय जो है ना, जैसे इंद्रिय भी स्वयं को भी बोध करावे और इंद्रिय जो है वह वस्तु अपने से संबंधित वस्तु का भी बोध करावे, ऐसा क्यों नहीं होता है? कोई इस चीज़ को नहीं मानता कि इंद्रिय इंद्रिय का बोध कराता है। मैंने कहा होगा कि आँख जो है ना, आँख को नहीं देख पाती है, नाक जो है वो नाक को जो है ना नहीं सूंघ पाती है। जो भी इंद्रियां हैं उस इंद्रिय से स्वयं का बोध नहीं होता है, इंद्रिय हमेशा जो है ना अन्य का ही बोध कराती है। तो यहाँ प्रश्न आया समझ में, कहा कि जब शब्द से अर्थ का बोध होता है और शब्द स्वयं का भी बोध कराता है, इसी तरह से इंद्रियों में भी होना चाहिए कि इंद्रिय अपने विषय का भी बोध करावे और स्वयं का भी बोध करावे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न उठाया गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं 57वीं कारिका में। इसका पहले मैं जवाब बता देता हूँ, फिर कारिका पर जाऊँगा। इसका जवाब ये है कि स्रोत कोई वक्ता है और कोई श्रोता है। श्रोता जब कोई शब्द नहीं सुन पाता है तो पूछता है कि इन्होंने क्या कहा या आपने क्या कहा। तो इस तरह से शब्द के विषय में प्रश्न करता है। क्यों करता है? कि जब वह शब्द नहीं सुनता है तो उसको अर्थ की प्रतीति में बाधा होती है, और उस अर्थ प्रतीति में जो बाधा होती है उसी बाधा को ख़त्म करने के लिए वो पूछता है कि आपने क्या कहा या उन्होंने क्या कहा। इस तरह का सवाल जो है वो इंद्रिय के विषय में नहीं किया जाता है। जब मान लीजिए कि किसी को, जैसे कोई बच्चा है, अबोध बालक है, देखता तो वो भी है लेकिन उसको चक्षुरेंद्रिय का ज्ञान नहीं है, सुनता तो वो भी है लेकिन उसको श्रोत्रेंद्रिय का ज्ञान तो नहीं है। तो शब्द जो है ना वो ज्ञात होने पर ही अर्थ को बताता है, लेकिन इंद्रियां जो हैं वो अज्ञात रहने पर भी जो है अर्थ को बताया करती है। ये दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है दोनों में। शब्द ज्ञात होने पर ही अर्थ को बताता है और इंद्रियां जो हैं वो ज्ञात अज्ञात दोनों अवस्था में जो है वह अपने विषय को बताती है। ये जो अंतर है, इसी अंतर के कारण आप जो प्रश्न कर रहे थे कि शब्द की तरह इंद्रिय को भी स्वयं का बोध कराना चाहिए, तो वह बोध नहीं कराएगी, क्योंकि शब्द में जो है ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व शक्ति दोनों है, लेकिन इंद्रियों में जो है केवल ग्राहकत्व शक्ति है, ग्राह्यत्व शक्ति नहीं है। ये तो प्रश्न उत्तर हो गया। अब 57वीं कारिका में इसी बात को देखेंगे कि अतः, अतः अर्थात दोनों में भेद है, माने इंद्रिय में और शब्द में क्या भेद है, कि एक जो शब्द जो है वह ज्ञात होकर के ही बोध कराता है और इंद्रियां जो हैं वो अज्ञात होकर के ही बोध कराती हैं। यही है अतः का अर्थ। अतः माने इसलिए, माने शब्द जो है ज्ञात होने पर ही बोध कराता है। इसलिए अनिर्ज्ञात रूपत्वात्, जब श्रोता अनिर्ज्ञात रूप होता है, माने शब्द का रूप उसे अनिर्ज्ञात रहता है, अज्ञात रहता है, तो किम आह इति अभिधीयते, किम आह क्या बोला क्या कहता है इति अभिधीयते, श्रोता के द्वारा ये पूछा जाता है। अभिधीयते माने कथ्यते। तो जब शब्द अनिर्ज्ञात स्वरूप होता है, शब्द का स्वरूप ज्ञात नहीं रहता है, तो श्रोता पूछता है कि किम आह, कि क्या बोल रहे हैं। इंद्रिय के विषय में ऐसा नहीं है, न इंद्रियाणाम प्रकाशेर्थे स्वरूपम गृह्यते यथा, कि इंद्रिय के विषय में ऐसा नहीं है। इंद्रिय जो है अज्ञात होने पर ही जो है अपने अर्थ को बता देती है, उसको ज्ञात अज्ञात से कोई लेना देना नहीं है। तो न इंद्रियाणाम प्रकाशेर्थे, इंद्रियों को अपने से प्रकाशित होने वाला जो अर्थ है, विषय है, उसके लिए स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। इंद्रियों के स्वरूप का ज्ञान न हो तो भी इंद्रियां ज्ञान कराती हैं, किंतु शब्द में शब्द के स्वरूप का जब ज्ञान होगा तभी जो है वह अर्थ को अर्थ का बोध करा पाता है। अब 58वीं कारिका को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक सवाल है, आप लोग व्याकरण के बच्चे हो, व्याकरण में प्रत्यय का जो विधान होता है, जैसे अग्नेर ढक कि अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय हो, अब यहाँ पर जो अग्नि अग्नेह ढक कहा गया कि अग्नि शब्दात ढक प्रत्यय स्यात्, यहाँ अग्नि के दो अर्थ होंगे। यहाँ भी एक तो अग्नि का अर्थ होगा अग्नि शब्द स्वरूप, एक होगा इसका अर्थ आग है? तो क्योंकि शब्द का के दो अर्थ होते हैं ना, शब्द भी अर्थ होता है और अर्थ भी अर्थ होता है, तो यहाँ अग्नेर ढक में जो अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय का विधान किया गया है, यहाँ इस अग्नि में बोध्य और बोधक, वाच्य और वाचक, ये दोनों जो हैं ये समानानुपूर्वी हैं, माने दोनों का अक्षर जो है सेम है, अग्नि शब्द और अग्नि अर्थ, शब्द को भी अग्नि कहते हैं और अर्थ को भी अग्नि कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा संगी भाव कैसे होगा ये प्रश्न है। संज्ञा संगी भाव का मतलब ये हुआ कि यह संज्ञा है और यह संगी है, जैसे अदेंग गुणा है तो अदेंग गुणा में गुण संज्ञा है और अदेंग जो है वह संगी है, ऐसे वृद्धिरादेच में वृद्धि संज्ञा है और आदेच संगी है, इसी तरह से अग्नेर ढक में अग्नि जो है वह संज्ञा भी है और अग्नि जो है वह संगी भी है, तो जो संगी होता है ना उसी से प्रत्यय किया जाता है। तो यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि यहाँ शब्द और अर्थ अर्थात संज्ञा और संगी दोनों जो है समानानुपूर्वी है, मान दोनों की अनुपूर्वी स्पेलिंग, स्पेलिंग को अनुपूर्वी कहा जाता है संस्कृत में, दोनों की स्पेलिंग दोनों की अनुपूर्वी जो है समान है, और समान में संज्ञा संगी भाव नहीं होता, संज्ञा संगी भाव होने के लिए असमान होना जरूरी है। जैसे वृद्धि संज्ञा है और आदेच क्या है संगी है, तो दोनों असमान है ना, ऐसे ही अदेंग गुणा में भी गुण जो है संज्ञा है और अदेंग जो है संगी है, दोनों की अनुपूर्वी अलग अलग है। लेकिन यहाँ अग्निर ढक में जो कहा कि अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय हो, तो यहाँ अग्नि का अर्थ तो दोनों है, अग्नि शब्द भी है अग्नि अर्थ भी है, तो कैसे यहाँ पर बुद्धि बोधक भाव होगा है? कैसे यहाँ पर जो है संज्ञा संगी भाव होगा, इसी प्रश्न का उत्तर 58वीं कारिका में बताते हैं कि भेदे न अवगृहीतो द्वौ शब्द धर्माव अपोधृतौ, द्वौ शब्द धर्मौ अपोधृतौ, ये विच्छेद होगा, द्वौ शब्द धर्मौ अपोधृतौ, तो दो जो है ना शब्द के धर्म है, कौन कौन धर्म है तो शब्द के दो, तो एक है वाच्यत्व धर्म एक है वाचकत्व धर्म, इसको आसान भाषा में कहें तो एक है बोध्यत्व धर्म एक है बोधकत्व धर्म, तो ये जो दो शब्द धर्म हो, दो शब्द धर्म जो है वाच्यत्व धर्म और वाचकत्व धर्म, ये दोनों भेदेन अवगृहीतौ, भेदेन माने बुद्धि भेदेन, बुद्धि के भेद से अवगृहीतौ, अवगृहीतौ का मतलब क्या होगा ज्ञातौ, माने शब्द के जो दो धर्म हैं वाच्यत्व वाचकत्व धर्म, ये दोनों वस्तुतः तो अभिन्न है, वाच्यत्व धर्म और वाचकत्व धर्म क्या है वस्तुतः अभिन्न है, माने दोनों धर्मों में परस्पर भेद नहीं है, फिर भी भेदेन अवगृहीतौ, वह जो है ना अभिन्न के रूप में नहीं गृहित होकर के भिन्न रूप में वह गृहित होता है, भेदेना माने भिन्नतया, अवगृहीतौ माने ज्ञातौ, शब्द के दोनों धर्म भिन्न रूप से जो है ना अवगृहित होते हैं ज्ञात होते हैं। अपोधृतो, अपोधृतो माने पृथकतया कल्पितौ, पृथक रूप से ये दोनों धर्म कल्पित रहते हैं। कैसे, तो एक मान लीजिए कि लक्षण वाला शब्द और एक जो है लक्ष्य वाला शब्द, तो शब्द तो वही है अग्निर ढक, ये सूत्र है लक्षण है तो इसका अग्नि शब्द है, और प्रयोग में जो अग्नि शब्द आता है व्यवहार में जो आता है एक वो अग्नि शब्द हो गया, तो आनपुर भी बराबर ही एक जैसा ही है, लेकिन इसमें भेद भिन्नता कैसे आ गई? तो एक अग्नि शब्द है सूत्र वाला अग्नि शब्द और एक अग्नि शब्द है प्रयोग वाला अग्नि शब्द। तो इस तरह से भेदे न अवगृहित हो, भेद भिन्न रूप से जो है ये दोनों शब्दों के धर्म गृहित होते हैं। ये वस्तुतः अभिन्न है फिर भी अपोध्य, तो फिर भी अलग अलग रूप से ये कल्पित होते हैं। आ भेद कार्येषु, भेद कार्य कौन सा हुआ? वही हम जो ढक प्रत्यय जो करेंगे ना अग्नि शब्द से, प्रत्यय विधि जो होती है उसको कहा गया है यहाँ पर भेद कार्य। तो भेद कार्येषु माने प्रत्यय विधिषु, प्रत्यय विधि में हेतुत्वम, हेतुत्वम माने कारणत्वम, अविरोधेन गच्छतः, अविरोधेन माने विरोधाभावेन, कि दोनों धर्म जो है वाच्यत्व धर्म और वाचकत्व धर्म ये हेतु बन जाते हैं भेद कार्यों में, अर्थात प्रत्यय विधि में ये दोनों धर्म हेतु बनते हैं, कारण बनते हैं। तो ये जो सवाल किया गया था कि दोनों में समानता है आनुपूर्वी में, तो संज्ञा संगी भाव कैसे होगा? उसका जवाब दिया कि वस्तुतः तो ये दोनों अभिन्न हैं, फिर भी एक सूत्र में रहने वाला अग्नि शब्द और एक प्रयोग में रहने वाला अग्नि शब्द इस तरह से भिन्न रूप से ये अवगृहित होते हैं, ज्ञात होते हैं, और भिन्न रूप से ज्ञात होने के कारण ही भेद कार्यों में माने प्रत्यय आदि के विधान में ये दोनों जो हैं शब्द धर्म हेतु बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। इस तरह से प्रश्न भी हुआ और उत्तर भी हुआ। तो आज का पाठ हम यहीं संपन्न करते हैं, 59वीं कारिका से आगे हम पढ़ेंगे।